परमात्मा और गुरुजनों की कृपा से हम लोग विचार कर रहे हैं कठोपनिषद के विषय में। कल थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से विचार का प्रारंभ हम लोग किए थे। मनुष्य का मनुष्यत्व यही है, लोभ और भय से हट करके, जैसे पशु चारा से नहीं तो डंडे से प्रवृत्त होता है। चारा दिखा दो तो पशु आ जाता है, चारा से ना आता हो तो डंडा दिखा दो। तो यहां पर क्या है, चारा हो गया लोभ और डंडा हो गया भय, है ना? तो चारा और डंडे से हम यदि पशु की तरह प्रवृत्त हुए तो दोनों में कोई अंतर नहीं। तो मनुष्य का मनुष्य तो यही कहा जाएगा कि लोभ और भय से हट करके कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्त होना। सबके प्रति हमारा कर्तव्य है, माता के प्रति होता है, पिता के प्रति होता है, गुरु के प्रति होता है, देश के प्रति होता है, परंपरा के प्रति होता है। लेकिन इससे भी अतिरिक्त और एक कर्तव्य होता है जिसको परम पुरुषार्थ बोलते हैं। वास्तविक मनुष्य जन्म मिलने का उद्देश्य जो है उसको कहा जाता है परम पुरुषार्थ, मोक्ष। तो परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना यही परम कर्तव्य है। तो इसी बात को यहां पर जमराज जी और नचिकेता के संवाद में कहा जा रहा है कि ज्ञान को धारण करना हो तो किस प्रकार का अंतकरण हमारी बुद्धि होनी चाहिए, ये बात यहां पर बताई जा रही है। और कामना जीवन में हो जाने पर व्यक्ति चालाक बन जाता है, कामना व्यक्ति को चालाक बनाती है। चालाक व्यक्ति का यहां पर काम नहीं है इस साधना मार्ग में। इसलिए ये संवाद में कहा जा रहा है। तो नचिकेता के पिता ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सर्वस्व दान देने का विधान था। तो उनका पुत्र के प्रति मोह था, स्वार्थ भी है, दोनों है। कल तो हमने कहा कि पशु में तो मोह होता है, गौ का मोह होता है बछड़े के प्रति, लेकिन स्वार्थ नहीं होता है। बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो मुझे छोड़ करके जाएगा ही, तो गौ को भी ज्ञान है ना? लेकिन मनुष्य में मोह भी होता है, स्वार्थ भी होता है। पशु में मोह तो होता है, स्वार्थ नहीं होता है। तो नचिकेता के पिता का दोनों था, स्वार्थ भी और मोह भी है। तो स्वार्थ और मोह के कारण बढ़िया बढ़िया गौ को रग लिया दूध के लिए, और जो काम की नहीं है ऐसी गौ को दान में दे रहा है। और पुत्र का पुत्रत्व तो ही है पिता को अधर्म से रक्षा करना है। इसलिए पूम नाम नरकात्रायते इति पुत्र है। पूम का अर्थ नरक, नरक से जो रक्षा करता है अपने पिता को उसका नाम हो गया पुत्र। पुत्र में पुत्रत्व है नचिकेता में, इसलिए वो बैठ करके देख रहा है और समझ लिया कि मेरे कारण पुत्र को, मेरे प्रति जो है पिता को मोह हो रहा है, जिसके कारण इनको नरक में जाना पड़ेगा। और मेरे रहते हुए यदि इनको नरक में जाना पड़ता हो तो फिर मैं कैसा पुत्र हूं। ये देखो छोटा सा बालक है, कैसी भावना है। तो यहां पर ये ध्यान देने की बात है, बात तो छोटी है लेकिन बहुत गंभीर है। और ये भी बात समझ लो, भगवान की कृपा ना हो तो इस प्रकार बोल नहीं सकता ये बालक। अब बालक बोल रहा है यहां पर कि हे पिताजी कस्मै माम दास्यसीति। है देखो यहां पर लिखती है श्रुति तातमल, हे पिता, हे पिता मैं भी तो आपका धन हूं, मुझे आप किस रितिज के लिए आप दे रहे हो। एक बार बोला, पिता ने कुछ नहीं कहा। दो बार बोला तब भी कुछ नहीं कहा। जब तीसरा बार बोला तब उनको क्रोध आ गया। तो क्या बोल दिया कि मृत्यवे त्वा ददामि। ये देखो जाओ मृत्यु के पास। तो यहां पर ध्यान देने के बाद ये है, कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं उसका वास्तविक फल नहीं मिल पाता है। बहुत अनुष्ठान चलता है आजकल लेकिन जो फल मिलना चाहिए फल नहीं मिलता है। कारण क्या? एक तो अनुष्ठान कराने वाला ही अशुद्ध होता है, एक बात हो गई। पंडित ही शुद्ध नहीं होता है, और कैसा भी बोलो मंत्र चलेगा, है ना? और जजमान भी शुद्ध नहीं होता है और नियम का पालन नहीं करता है। नियम का पालन यदि न हो तो अनुष्ठान का फल वास्तविक मिलेगा नहीं। इसे अनुष्ठान चल रहा है और अनुष्ठान में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तो जब जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए लेकिन कम से कम अनुष्ठान के समय तक क्रोध नहीं करना चाहिए। और इनको क्रोध आ गया ना। क्रोध क्यों आता है? कामात क्रोधो भी जायते, गीता में कहते हैं ना, काम से क्रोध होता है। कामना की पूर्ति न हो तो क्रोध होता है, और कामना की पूर्ति हो जावे तो क्या होता है? राग होता है। इसलिए कामना जो है ना कुछ किए बिना छोड़ेगी नहीं। थोड़ी देर के लिए कामना की पूर्ति हो जाए तो उस पर राग होगा, बढ़िया चीज है रसगुल्ले, और नहीं मिला तो क्रोध हो जाएगा। इसलिए रागात्मक द्वेषात्मक संस्कार छोड़े बिना कामना रहेगी नहीं। तो इसलिए यहां पर ये ध्यान देने की बात है। लेकिन बालक को देखो, बालक को तो बोल दे जाओ तुमको दे दिया मृत्यु के पास, जमराज के पास दे दिया, लेकिन उनको कोई बुरा नहीं लगा बालक को। और वो बैठ करके सोच रहा है भाई मेरे में क्या दोष है, किस कारण से मुझे भेज रहे हैं पिताजी। कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा क्योंकि मेरे पिता है, तो मेरे बुरा तो कभी कर नहीं सकते। लेकिन भेज रहे हैं, भेजने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, ये सोच रहा है बालक नचिकेता। और वो यहां पर सोच करके बोलता है कि भी मैं विद्यालय में कभी भी द्वितीय क्लास में पास किया नहीं, द्वितीय श्रेणी में सेकंड डिवीजन में भी कभी नहीं हुआ, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास किया। ये बोलते हैं बहुनाम एमी प्रथमो बहुनाम एवी मध्यम, हमेशा तो प्रथम में ही पास करता हूं, कभी कभी द्वितीय सेकंड क्लास में हो जाता, और अंतिम क्लास में तो कभी गया नहीं मैं। प्रथम शिष्य कौन? जो गुरु बताए बिना गुरु की इशारे को समझ करके कर लेता है, वो हो गया प्रथम शिष्य। और गुरु उपदेश करने पर करे और उपदेश ना करने पर ना करे, वो हो जाएगा द्वितीय। लेकिन तृतीय श्रेणी का छात्र में कभी हुआ है नहीं, तो मेरे जैसे बालक है तो क्या उद्देश्य रहा पिताजी का जमराज के पास भेजने के लिए? तो वो बैठ करके सोचता है। तो इस प्रकार का विचार परमात्मा की असीम कृपा के बिना हो ही नहीं सकता है। एक छोटा सा बालक है, अरे चला गया यमपुरी में चला गया, और उस समय क्या हुआ कि जमराज कहीं गए हुए थे किसी कार्य में, लेकिन उस समय 3 दिन और 3 रात कुछ खाया नहीं पिया नहीं, वो बैठा रहा जमराज जी की परीक्षा करता रहा। जब प्रतीक्षा करता रहा, जब जमराज जी आ गए तो उनकी पत्नियां है, उनके नौकर वगैरह सब दौड़ करके आए और बोले कि जमराज आपकी पूरी जो है ना जल गई। क्या जल गई? क्योंकि साक्षात अग्नि आया है, साक्षात अग्नि कौन? ब्राह्मण बनकर के। इसे लिखते हैं वैश्वानर प्रविशति अतिथिर ब्राह्मण गुहन। ये वैश्वानर अग्नि जो है ब्राह्मण के रूप से आया हुआ है, इसलिए पूरी जल रही है जमपुरी। इसलिए क्या करो, इस अग्नि को शांत करने के लिए आप जो है जल लेकर के जाओ। इसलिए स्वयं ही शान करने का विधान है, नहीं तो शैल्य होकर नौकर को ही बोल देंगे भाई जाओ पानी पिलाओ पंडित जी को। ऐसे नहीं, स्वयं सेवा करने का विधान है। और इतने बड़े देखो ज्ञानी है, जमराज ज्ञानी है, फिर भी अपने कर्तव्य को नहीं भूल रहे। इसलिए स्वयं आकर के जो है क्षमा मांगते हैं। एक छोटा सा बालक है और उनके पास जाकर के क्षमा मांगते, नमस्ते तो ब्राह्मण स्वस्ति मेस्तु। ये देखो आपको नमस्कार है ब्राह्मण देव, क्यों नमस्कार है? क्योंकि मेरे से अपराध हो गया है, मेरे कारण जो है आपको 3 दिन 3 रात तक बिना खाए पिए रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, क्या हो जाता है कि कारण दिखता नहीं कार्य दिखता है। किसी का मैं कभी भी अनादर कर लेते हैं, कुछ कटु शब्द बोल देते हैं, कोई भिक्षा के लिए आया तो निकाल देते हैं, कोई भोजन के समय आ गया है ना, तो जो आ गया अतिथि देव हो कहा गया, अतिथि को पहले भोजन किया करा जाता है उसके बाद स्वयं। लेकिन भोजन नहीं कराया अपमान कर दिया, उससे मेरे कुछ लगता नहीं। लेकिन भोजन न करा करके जो हमने पाप को अर्जन किया ना, वो पाप जब फल देने लगेगा तो उसके बदले कितना दिन तक आपको भूखा रहना पड़ेगा कह नहीं सकते। ये तो पाप की बात हो गई, इसी प्रकार पुण्य की बात भी होती है। इसलिए बड़े बड़े संत होते हैं, ये जो प्रत्यक्ष अनुभव करो, ये संत की कृपा यदि अदृश्य के रूप से यहां पर न होती इस प्रेमपुरी आश्रम में, तो आप लोग आ सकते हैं? कैसे आते? हम तो मेहनत करके आ रहे हैं, पैसा खर्च करके आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, टैक्सी से आ रहे हैं, है ना। तो इसी बात को आप कहते हो, लेकिन एक कृपा जो है, ईश्वर की कृपा तो है ही, संतों की कृपा है वो दिखती नहीं है। उसका क्या दिखता है? कार्य दिखता है, कारण दिखता नहीं। इसलिए कभी कभी लोगों को अभिमान हो जाता है, अरे भी हम ना होते तो कार्य कैसे चलेगा। अभिमान तब होता है जब कारण में दृष्टि नहीं जाती है। मूल कारण तो ईश्वर की कृपा है, संत की कृपा है, हम तो केवल निमित्त हो जाते हैं। निमित्त मात्र भव सभ्य साची, तुम तो केवल निमित्त हो। इसलिए इस संवाद में यही ध्यान देने की बात है, ईश्वर की कृपा को, गुरु कृपा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांत गुरु ईश्वरा, जब तक शरीर है तब तक ये तीनों को नहीं भूलना चाहिए। यावत जीवम त्रयो वंद्या, तीन हमेशा वंदनीय है, पूजनीय है। आपको ज्ञान होने के बाद भी वो पूजनीय है। कई लोगों को भ्रांति हो जाती है, अरे भाई जिसको ज्ञान हो गया तो अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान हो गया, अद्वैत तो अद्वैत ही है, सब एक हो गए, तो फिर कौन किसको नमस्कार करेगा। और कोई किसी को नमस्कार कर रहा है तो लोग बोलते हैं इसको ज्ञान नहीं हुआ है। कोई मान लीजिए किसी को ज्ञान हुआ, मंदिर में गया और माथा टेका, है ना, तो समझते कि इसको ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए तो मंदिर में जा रहा है। तो ज्ञान हो गया सर्वम खलिदम ब्रह्म हो गया तो कौन किसको नमस्कार करेगा, ऐसा नहीं। ज्ञान होने के बाद भी अपना कर्तव्य तो दूसरे के लिए होता ही है। इसलिए यहां पर भगवान भाष्यकर दोनों को नमस्कार किए हैं, मंगलाचरण में जमराज जी को तो किए हैं, और जमराज जी का जो चेला है नचिकेता शिष्य उसको भी नमस्कार किए। इसलिए गुरु को भी नमस्कार किया जाता है, गुरु का शिष्य को भी नमस्कार किया जाता है। यावत जीवम त्रयो वंद्या, जब तक शरीर है तब तक तीनों पूजनीय है। कौन कौन? वेदांत शास्त्र, शास्त्र की कृपा है, और गुरु है, गुरु की कृपा, और ईश्वर कृपा। इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जमराज जी ने कहा कि मेरे से अपराध हुआ है, इसलिए मेरे कारण आपको भूखा रहना पड़ा तीन दिन तीन रात तक, इसलिए इसके बदले आप कुछ मांगो, बर तीन बार मांगो। ये तीन बरान बणेश्वर। अच्छा, और ये पुत्र देखो, पुत्र जो है नचिकेता सोच रहा है, भाई पिता यदि मुझे न भेजे होते यहां, ये बिना मांगे बर मिल रहा है, ये बर कैसे मिलता है? जिसके कारण मुझे यहां आना पड़ा और जिसके कारण ये मुझे सुजोग मिल रहा है, बिना मांगे बर मिल रहा है, तो उसके लिए पहले मांगना चाहिए। ये देखो, ये पिताजी के लिए मांगा और पिताजी को बार बार क्रोध आ जाता है, पिताजी को बार बार क्रोध आता है। और पिताजी क्या सोचते होंगे, वो मर गया है कि जिंदा है, और मैं जब लौटूंगा यहां से मुझे भूत प्रेत न समझे, है ना। इसलिए पिताजी हमेशा के लिए संतुष्ट हो जावे, इसलिए पितृ संतुष्टि रूप से पहला बार हो मांगा। एक बार तो हो गया और दो बार रह गए, और छोटा सा बालक उनका हृदय कैसा होगा, वो बैठ करके सोच रहा है, कहां पर, जमपुरी में सोच रहा है क्योंकि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ये प्रत्यक्ष दिखता है। एक तो उत्कृष्ट फल चाहता है, अभ्युदय चाहता है, अलौकिक फल को चाहता है, स्वर्ग चाहता है, ब्रह्मलोक चाहता है। वो कौन होंगे? जो विचार नहीं कर पाते, संसार का जो परीक्षण नहीं करते, परीक्षा लोकान कर्मचितन, जो संसार का परीक्षण नहीं करता है, खाने पीने में लगा रहता है, लेकिन है आस्तिक, है आस्तिक लेकिन संसार सत्य है कि मिथ्या है ऐसा परीक्षण नहीं कर पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ मांगना चाहिए। इसलिए जमपुर से ऐसी एक चीज लेकर के जाऊं जो सबके काम में आवे, है ना? लेकिन जिसको वैराग्य हो गया उसके लिए तो अनित्य फल की आवश्यकता नहीं है। तो जो विचार नहीं कर पाते हैं, अभ्युदय फल को चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ लेकर के जाऊं। इसलिए हे गुरुदेव, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, ऐसा मत समझो कि मैं अपने लिए मांग रहा हूं द्वितीय बार, लोगों के लिए मांग रहा हूं। ये स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है अग्नि विद्या, ये अग्नि विद्या को द्वितीय बार के रूप से मांगा। और नचिकेता को अग्नि विद्या का उपदेश दिया, कैसे वेदी बनानी है, कितने ईटे लगते हैं, कैसे मंत्र बोलना है, सब बता दिया, विधि विधान से सब बता दिया। और छोटा सा बालक है, चित्त एकदम शुद्ध है, गंगा जी के जल की तरह एकदम शुद्ध है। और अनुभव में मैं कर लो, जिसमें आपका चित्त एकदम शुद्ध होता है, एकदम एकाग्र होता है, एक बार सुनने से आपको स्मरण हो जाता है, होता है कि नहीं? अनुभव में हो जाता है, जीवन भर नहीं भूलते हैं। इस प्रकार जैसा सुनाया नचिकेता ने अग्नि विद्या को, हाँ, ऐसा ही सुना दिया नचिकेता ने, जैसा सुना ऐसा पूरा सुना दिया, जैसे रिकॉर्डिंग, जैसे भगवान भाष्यकार को सुनाया था पद्मपादाचार्य जी ने, जैसा सुने थे ऐसा ही भगवान भाष्यकर सुना दिए, है ना? उसको कहते हैं जो है पंचपादी का ग्रंथ। तो ऐसा ही जो है नचिकेता ने सुना दिया भाई, और गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए, ऐसा शिष्य मुझे मिलते रहे, ऐसा शिष्य जिसको मिले वो गुरु भी धन्य हो जाता है, बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के फिर एक बोनस बर के लिए बोले, बोनस बर चौथा बर हो गया। तो वो बर कौन सा हुआ आप लोग सुनते हैं? हाँ, तो उन्हें कहा कि ये जो विद्या है ना अग्नि विद्या, तुम्हारे नाम से जाना जाए, ये नाचिकेता विद्या, नाचिकेता अग्नि विद्या, ये बोनस हो गया। तो कितने बर हो गए भाई? दो बार बोनस के साथ तीन बार हो गए, एक अंतिम बार रह गया। तो मांगो फिर अग्नि, ये जो है नचिकेता। तो उन्हें विचार किया, अभी जो बार मांग रहा हूं मेरे जैसे मुमुक्षु के लिए मांग रहा हूं, जिसने संसार का परीक्षण कर लिया, जिसको संसार के प्रति वैराग्य हो गया, अभ्युदय फल नहीं चाहता है, ना स्वर्ग चाहता है ना ब्रह्मलोक चाहता है, यहां की बात तो बहुत दूर है। तो उनके लिए तो संसार की चीज मांगना बेकार है। इसलिए जो मोक्ष मिलता है जिस हेतु से, साधन से, उसको मांगना चाहिए। ये हो गया आत्मज्ञान। इसलिए बोलता है नचिकेता कि देवेर अत्रापि विचिकित्सं पुरा नहि सुविज्ञेयम् ओरेश धर्म। जिसके विषय में देवता लोग भी संशय हो जाता है, देवता लोगों को भी संशय हो जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा रहता है कि नहीं रहता है, और यदि रहता है तो सविशेष है कि निर्विशेष है, ये सब ले लो। और निर्विशेष यदि है तो वो निर्विशेष आत्मा एक है कि अनेक है, ये तमाम प्रकार का प्रश्न पूछने का आधार है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का अस्तित्व आत्मा रहता है कि नहीं रहता है, बहुत लोगों को संशय हो जाता है। इसलिए आप जो है इसके विषय में उपदेश करो, आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। नचिकेता सोचते हैं भाई आत्मज्ञान देना है, बुद्धि रूपी घड़े में ज्ञान रूपी अमृत को भरना है, थोड़ा ठोक पीट ले, घड़ा में कोई छिद्र तो ना है, और एक छिद्र हो गया तो ज्ञान अमृत रहेगा नहीं, निकल जाएगा। लेकिन नचिकेता तो भाई ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है, यहां पर ये प्रश्न उठता है कि क्या नहीं जानते थे वो नचिकेता कैसा है? जानते थे, नचिकेता साधक है, ज्ञान के अधिकारी है कि नहीं है तो जानते थे, फिर परीक्षा क्यों कर रहे हैं? फिर वो जानते हैं परीक्षा क्यों कर रहे हैं? इसका तात्पर्य वो नहीं है, नचिकेता की वो परीक्षा नहीं कर रहे हैं, वो तो त्रिकालदर्शी है। वास्तविक ज्ञानी हो तो समझ लेता है कि ये अधिकारी है कि नहीं है, लेकिन ये लोगों की शिक्षा के लिए बता रहे हैं। जब तक ज्ञान का अधिकारी ना हो जावे तब तक ज्ञान नहीं देना चाहिए, और ज्ञान दे भी दिया जावे वो ज्ञान को धारण नहीं कर सकता है, अपितु तो ज्ञान को बेचेगा वो। आजकल यही हो रहा है कि नहीं, है ना? तो उत्तम अधिकारी वो नहीं देते हैं, हाँ, उत्तम अधिकार नहीं दिया और शास्त्र का ज्ञान हो गया, उसको अनुभव तो होगा नहीं और ज्ञान को उल्टा बेचेगा वो। इसलिए यहां पर लोगों के शिक्षा के लिए ज्ञान का अधिकारी कैसा होना चाहिए इस बात को बतलाने के लिए नचिकेता की परीक्षा यहां पर जमराज कर, ऐसा नहीं कि जमराज जी को ज्ञान नहीं था कि नचिकेता अधिकारी है कि अधिकारी नहीं है। इसलिए यहां पर बहुत सारे जो है परीक्षण किया, ज्ञान का अधिकारी नहीं है कि नहीं है, इसलिए कि हे नचिकेता तुम्हारा तो अभी समय खेलने कूदने का है, खाने पीने का समय है, और तुम जो है आत्मज्ञान मांग रहे हो, दूसरा कुछ मांगो ना, पुत्र मांगो, पौत्र मांगो, पशु है, हाथी है, सब मांगो, यहाँ पर गिनाया है, स्वर्ग मांग लो, स्वर्ग मांग लो, ब्रह्मलोक मांग लो, बहुत सारे मांग लो, लेकिन ऐसा आत्मज्ञान तुम मत मांगो। तो उन्होंने फिर कहा कि बताओ ये जो आप दे रहे हो तो इससे हमारी इंद्रियां पुष्ट होगी कि जो भाई कि शक्तिहीन होगी, पुष्ट होगी कि रुष्ट होगी? तो कह दिया ये तो इंद्रियां हमारी इंद्रियां को ये भोग जो है सुखाने वाली है, कामना को और बढ़ाने वाली है, इससे हमारी इंद्रियां कभी पुष्ट हुई नहीं, किसी की हुई नहीं, जब किसी की हुई नहीं तो हमारी भी नहीं होगी। इसलिए ये बढ़िया बढ़िया चीज जो देने वाले हो ये तो भी आपके पास रखो, आपके पास रहने से आपके जमपुरी जो है शोभित होगी, हमारा कोई इससे प्रयोजन होने वाला नहीं है, ये न वित्ते न न तर्पणीयो मनुष्य, ये बता दिया यहाँ पर। तो ऐसा जब परीक्षण किया, इस परीक्षण में नचिकेता पास हो गया, पास हो गया, अथवा ऐसा प्रलोभन मिलने पर भी जो प्रलोभन से प्रलुब्ध न हो, प्रभावित न हो, वो होता है ज्ञान का अधिकारी, ये अपने लिए बता रहे हैं, यही समझ लो। और ये भी ये बात भी बता देते हैं, जहां पर ज्ञानी का लक्षण कहा जाता है ना ब्रह्म ज्ञानी लक्षण, चित्त प्रज्ञ का लक्षण बताया गीता में, बहुत जगह पर जहां पर ज्ञानी का लक्षण बताते हैं ये नहीं समझ रहे कि ज्ञानी के लिए वो है। भाई ये ज्ञानी है कैसे पता लगेगा, नहीं पता लग सकता है। अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता है, तो पहचान लिया तो स्वयं ज्ञानी हो गया। इसलिए ज्ञानी की जो भावना है, ज्ञानी की जिस स्थिति में ज्ञानी है उस स्थिति को अज्ञानी नहीं पहचान सकता है। इसलिए ज्ञानी की स्थिति कैसी है, अथाह समुद्र की तरह है। जैसे आप कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी शक्ति लगा लो, समुद्र के अंदर कितना जाओगे, एक मीटर दो मीटर तीन मीटर, उसे गहरा तो नहीं जा सकता। हाँ, कोई मशीन लगाओगे तो अलग बात है। इसलिए ज्ञानी को पहचानने के लिए कोई मशीन नहीं है, नहीं पहचान सकते। मशीन तो ज्ञान है और ज्ञान तो अभी हुआ नहीं। इसलिए जगह जगह पर जहां पर जो है ज्ञानी का लक्षण बताया जाता है, वो ज्ञानी के लिए नहीं है। वो लक्षण अपने में है कि नहीं है, और लक्षण जब नहीं घट रहा है तो भाई क्यों नहीं घट रहा है, उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक इसी प्रकार यहां पर कहते हैं, ये जो यहां पर बताया ज्ञान के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो नचिकेता के लिए नहीं है, वो अपने लिए हो। जब परीक्षण करने पर पास हो गया तब जमराज जी ने उपदेश किया, तो नचिकेता ने ये पूछा था, भाई गुरुदेव आप उसका उपदेश करो निर्विशेष ब्रह्म का, कि अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात् कृता कृता और अन्यत्र भूतात् भव्यात् यत् पश्यसि तद् वद। भाई ऐसी चीज को आप यदि जानते हो ना तो उपदेश करो, केवल सुन करके नहीं बोलना है। यत् पश्यसि तद् वद, कौन कारण से भी रहित, कार्य से भी रहित, धर्मा धर्म से रहित, धर्मा धर्म के फल से भी रहित है, उसका उपदेश करो। तो उपदेश कहां से प्रारंभ किया, कि सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, जितने भी वेद है जिसका प्रतिपादन करते हैं, जिस आत्मा का प्रतिपादन करते हैं वो कौन है, ओम इत्येत, वो ओमकार बोल दिया। ओमकार, ओमकार यहां पर ब्रह्म ज्ञान का साधन बताया, पर ब्रह्म प्राप्ति का भी साधन है और अपर ब्रह्म प्राप्ति का भी साधन है हिरण्यगर्भ। ब्रह्मलोक की प्राप्ति ओमकार से हो जाती है, पर ब्रह्म की प्राप्ति भी ओमकार से हो जाती है, और ओमकार शब्द में उपासना भी की जाती है। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतम आलम्बनम ज्ञात्वा योत् इच्छसि तद्, ये बता दिया। और ओमकार का जो अर्थ है परब्रह्म, वो परब्रह्म कैसा है ये बता दिया, ओणो अणियान महतो महियान ऐसे बता दिया। और जो प्राप्त करना चाहता है साधक जीवात्मा वो भी बता दिया, आत्मेन्द्रिय मनोजुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिण है ना, शरीर मन बुद्धि में जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, मतलब चिदाभास अंतकरण विशिष्ट जो चेतन हो गया, वो हो गया जीवात्मा, वो हो गया तम पद का क्या है वाच्यार्थ हो गया। वो अपने आप को शोधन करे तो लक्षार्थ का निर्धारण करे तो ब्रह्म का ज्ञान उसको हो जाएगा, इसे बता दिया। ये और जो है उसको एक रूपक बनाया, रूपक ये शरीर कैसा है आत्मा को समझने के लिए कहानी बताया, दृष्टांत। शरीर को रथ समझ लो, इंद्रिय को क्या समझ लो घोड़े समझ लो, और मन को लगाम समझ लो, बुद्धि को सारथी समझ लो, इसे बता दिया। और वो आत्मा कैसा है, छुपा है छुपा है। परब्रह्म तो अपना स्वरूप है लेकिन उसका भान नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बता दिया देखो कि ऐसा सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये छुपा है, छुपा है, छुपा है, ढक गया है अविद्या के कारण, बुद्धि में ढक गया है, इसलिए उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही, इसलिए ज्ञान चाहिए उसके लिए। अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश चाहिए, इसलिए अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान होगा सूक्ष्म अंतकरण से, शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। इसलिए बता दिया दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, अपनी बुद्धि को तुम सूक्ष्म करो, केवल सूक्ष्म होने से काम नहीं होता है, उसके साथ साथ शुद्ध भी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। अच्छा, तो प्रथम अध्याय में तीन बल्ली है, तीन बल्ली में आत्मा का निरूपण बहुत अच्छे ढंग से किया जमराज जी ने। उसके बाद जो है हम लोग विचार करेंगे द्वितीय अध्याय से। यहां पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं अवतरण में कि हे नचिकेता, हमने तो पहले बता दिया कि आत्मा जो है गूढ़ है, छुपा हुआ है, और बुद्धि एकाग्र हो, बुद्धि सूक्ष्म हो, तो आत्मज्ञान हो जाएगा, ये भी बता दिया। लेकिन बोलते हैं भाई ऐसी बुद्धि हमको नहीं मिल पा रही है, एकाग्र बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि हमको नहीं मिल पा रही है, भाई न मिलने का हेतु क्या है, क्या प्रतिबंध है कि जिसके कारण हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रही है, सूक्ष्म नहीं हो पा रही है, उसको समझना चाहिए भी, वो पता लगाना पड़ता है प्रतिबंध को। मान लो कि घर में कोई चोर है, घर की चीज घर का चोर चुरा रहा है, और चोर को ढूंढ रहे हो बाहर, और चोरी कभी भी बंद नहीं हो सकती है, पहले पता लगाओ कि घर का कोई आदमी तो नहीं चुरा रहा है, है ना? इसी प्रकार यहां पर चोर कौन है, चोर बाहर नहीं है, है ना? चोर क्या है, यहां पर बाहर नहीं, अंदर चोर है, अंदर चोर है, तो कौन चोर है, यहां पर आराम करते हैं, देखो चोर को ढूंढने के लिए उपाय है, यहां ये बता रहे हैं। भगवान भाष्य का लिखते हैं कह पुनः प्रतिबंधः, कौन सा प्रतिबंध है जिसके कारण हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो रही है। अब आरंभ करते हैं द्वितीय अध्याय में प्रथम बल्ली है, ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, जिसके बाद पुस्तक है, आप लोग देख सकते हो द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली। परांचिखाने वेतन स्वयंभूस तस्मात् परां पश्यतीनांतरात्मन कश्चिद्धिरः प्रत्येकात्मानमेक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू है, स्वयंभू है, स्वयंभू कौन है, परमात्मा, जिसकी सत्ता स्वतंत्र है उसको कहते हैं स्वयंभू। भगवान भाष्यकार यहां पर लिखते हैं स्वयमेव स्वतंत्र भवति सर्वदा न परतंत्र परमेश्वरः। ये स्वयंभू का अर्थ, भू का अर्थ सत्ता, स्वयंभू में भू शब्द का अर्थ सत्ता है, और वेदांत में सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती है। जैसे पर्दे में चित्र होता है तो पर्दा की ही सत्ता होती है, चित्र की नहीं होती है, चित्र की नहीं होती है, इसलिए वास्तविक सत्ता तो परमात्मा की ही होती है। मान लो आप सपनों में देखते हो, सपनों में रस्सी में सर्प को देखते हो, है ना? सपनों देख रहे हो सर्प को किस में, रस्सी में देख रहे हो, रस्सी में देख रहे हो, है ना? तो सर्प जो वहां पर रस्सी में भास रहा है कि आप ही में भास रहा है लगता है कि रस्सी में भास, रस्सी में नहीं भासता है। आप तो रस्सी को भी सत्ता देते हो, सर्प को भी सत्ता देते हो, इसी वगैरह जागृत में समझना है एक परमात्मा ही ये व्यवहारिक जगत को सत्ता दे रहा है और प्रातिभाषिक जगत को भी सत्ता वही दे रहा है। इसलिए अनेक सत्ता वेदांत में नहीं, एक सत्ता है। इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि जिसकी सत्ता स्वतंत्र हो, इसलिए माया की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा की सत्ता से माया की सत्ता है। इसलिए स्वयंभू का अर्थ भगवान भाष्यकार ने परमेश्वर लिखा है, क्योंकि उसकी सत्ता स्वतंत्र है। सदैव सम्य इदम क्रियासित, सत्ता तो परमात्मा की है। वो परमात्मा ने क्या कर दिया कि ये जो इंद्रिया है ना, हमारी इंद्रिया तो इंद्रिया को क्या कर दिया, वेतनत। परांची का अर्थ इंद्रिय, ये खानी का अर्थ इंद्रिया ख ख ख शब्द का अर्थ इंद्रिय, चक्षुरादि इंद्रिय। तो इंद्रियों को क्या कर दिया परमात्मा ने, व्यतणत। व्यतणत मतलब पीड़ो हिंसा अनादरय हो, हिंसा कर दिया अथवा अनादर कर दिया। मतलब क्या, जैसे कि मान लो आपके घर में एक बहू आई, नई बहू आई, तो बहू को तो मर्यादा में रहना चाहिए ना, मर्यादा में रहना चाहिए। अब मर्यादा में ना रहे और खिड़की में बैठ करके रोड तरफ देखती रहे हमेशा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब काम धाम सब छोड़ करके बैठ करके देखती रहे, तो आपकी भावना अच्छी नहीं होगी उसके प्रति। आप बहुत समझाते रहेंगे और नहीं समझेगी तो क्या करोगे फिर, तुमको बाहरी हमेशा देखना, तो बाहरी जाओ और क्या करोगे, बाहरी रह करके देखती रहो। इसी प्रकार जो परमात्मा ने बहुत समझाया है, इस शरीर रूपी घर में बहु कौन है, इंद्रियां है। शरीर रूपी घर में ये बहु होगी इंद्रियां, और परमात्मा ने बहुत समझाया कि बाहर तो मत देखो है ना, परमात्मा को आत्मा के स्वरूप को देखो, इसलिए इसको इंद्रिया बोलते, इंद्रिया समझ में है ना, इंद्रिया है ना, इंद्र हो गया परमात्मा है ना, परमात्मा के लिए जो है वो हो गया इंद्रिया। यहाँ पर ये चक्षुरादि मिला है, ये काहे के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है। इन दिनों से परमात्मा का स्मरण कर सकते हो। तो परमात्मा ने इंद्रियों को बहुत समझाया कि बाहर मत देखो, और इंद्रिया ने मानी नहीं परमात्मा की बात। विचार कर लो कि हमारी साक्षी जो है ना, हमेशा बोलती कि नहीं बोलती है, हाँ, कोई गलत कर्म करोगे तो आपको पता लगता है, नहीं पता लगता है। ऐसा नहीं समझना है कि धर्मा धर्म शास्त्र में है, धर्मा धर्म अपने हृदय में है, हाँ? आप झूठ बोलते हो फिर भी अंदर से पता लगता है कि झूठ बोलना गलत है, इसको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है कोई जरूरत नहीं है, ये अपना अंतक अपना जो साक्षी है वो बता देता है। भले ही आप झूठ बोल लेते हो, लेकिन मेरे से कोई झूठ बोले आपको सहन नहीं होता, क्यों, आपको ज्ञान है। देखो झूठ बोलना अपना स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार जो है परमात्मा ने समझाया इंद्रियों को, नहीं समझी वो इंद्रिया, बहु नहीं समझे, तो बोल दिया ठीक है, तो बाहर देखते रहो और क्या है, जीवन भर बाहर देखते रहो। इसलिए अभी तक इंद्रियां बाहर ही देख रही है ना, यही क्या है, इंद्रियों के प्रति हिंसा है, अनादर कर दिया। अरे भी किसी को मारना केवल अनादर नहीं, मारना केवल हिंसा नहीं होती है, बड़े लोगों को अनादर कर दिया तब भी हिंसा हो जाती है। जैसे लक्ष्मण को जब मारने का अवसर आया, आप तो जानते हैं कथा, जब 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 आया ना वो काल, काल आया कि नहीं, काल जब आया भगवान को सूचना देनी थी, भाई आपकी लीला खत्म होगी, आप अपने धाम में पधारो, है ना। तो राम जी के पास आकर के बोल, लेकिन एक प्रतिज्ञा है, इस बात का कोई सुनेगा नहीं। राम जी ने प्रतिज्ञा कर दिया, ठीक है। लक्ष्मण जी को बुला लिया, देखो बीच में कोई नहीं आना चाहिए, तुम गेट पर रहो। और वार्ता चल रही है तो दुर्वासा ऋषि आ गए, वो तो दुर्वासा है वो, तो बोल दे कि अभी ही हमको मिलना है राम जी से। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर बोला, अभी तो वार्तालाप हो रहा है राम जी के साथ, थोड़ी देर अपेक्षा करो। इतना बोलते ही वो तो दुर्वासा है, वो तो क्रोध आ गया, तुम जानते नहीं मेरे को, है ना, यही शब्द आता है पहले, तुम जानते नहीं मेरे को। तो लक्ष्मण तो विद्वान है, उन्हें सोचा कि भी देखो इसमें बुद्धिमानी है कि मेरा प्राण जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अयोध्यापुरी तो कम से कम बच जाएगी, भगवान का ऐश्वर्य एक तो बच जाएगा, इसलिए यही उत्तम समझ करके गया। और गया तो वही वार्तालाप चल रहा था, वो तो यही सूचना देगी कि आपकी लीला का समय हो गया। वो तो चला गया काल, लेकिन मारना कैसे मारेंगे अभी लक्ष्मण को, बड़ा संकट हो गया। फिर ये वशिष्ठ जी को बुलाया, तो वशिष्ठ जी ने एक तर्क दिया, भाई ये सम्मानित व्यक्ति है, इसको गला दबा करके मारना कोई हिंसा नहीं है, इसको अनादर कर दो, अपमान करके देश से निकाल दो, है ना, यही हिंसा हो गई। इसी प्रकार इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया, बहिर्मुखी, इसलिए अभी तक इंद्रियां जो है ना बहिर्मुखी हो गई, इसलिए बोल दिया देखो परांची पराक अंचते थी परांची, बाहर देखना जिसका स्वभाव हो गया, इसलिए खिड़की में बैठ करके ना, खिड़की क्या है, गोलक, ये सब गोलक है, ये गोलक में बैठ करके ये बाहर के फोटो खींचती रहती है। अरे फोटो तो क्या है, ये चक्षु फोटो खींच रही है, रूप खींच करके संस्कार को छोड़ दे, रील रील बनता ना, आजकल तो रील नहीं होता कैमरे में, मोबाइल में सब हो जाता है, तो उसमें रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग। इसी वक्त चक्षुरादि जो है ना, ये रूप आदि फोटो को खींच करके कहां पर भरेंगे, ये अंतकरण में भरे, संस्कार के रूप से रहेगा, ये आंख बंद करने पर भी वही दिखता है, फोटो खींच रही है, फोटो खींच रही है, यही हो गई हिंसा। इसलिए बोलते हैं तस्मात परांग पश्यति, इसलिए बाहर ही देखती है इंद्रियां, आत्मा के फोटो को नहीं खींच सकती है, आत्मा के फोटो को नहीं खींच सकती है, है ना। जो सभी चक्षुरादि इंद्रियों का आत्मा है, जो परमात्मा अधिष्ठान है, अधिष्ठान को विषय नहीं बना सकती है, कल्पित पदार्थ रूपादि को विषय बनाती है। न अंतरात्मन, ये अंतरात्मा है साक्षी, अथवा आत्मा को भी विषय नहीं कर सकती है और अपने आप को भी विषय नहीं कर सकती है, दूसरे को विषय करेगी। तो ये तो हो गए भाई बहिर्मुखी, लेकिन हमारे पास तो इंद्रियां है, और इंद्रियों को जब तक संयमित नहीं करोगे तब तक जो है मन एकाग्र नहीं होगा, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तो जो है ज्ञान होने वाला नहीं। ज्ञान की बातें तो कर सकते हो, ज्ञान की बातें करने के लिए इंद्रियों की कोई एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ब्रह्मवादी बोलना अलग बात है ना, अब ब्रह्म ज्ञानी होना अलग बात है। तो ब्रह्मवादी होने के लिए कोई इंद्रिय की एकाग्रता की आवश्यकता नहीं, याद कर लो और बोलते जाओ धड़ाधड़, कथा कर लोग बोलते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी होना कठिन है। इसलिए क्या करो, तो बोल दिया कि कश्चित धीर, धीर बनना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, धीर बनना पड़ेगा। धीर का अर्थ यहाँ पर विवेकी, विवेकी, तो विवेकी कैसा बनेंगे और कब बनेंगे, ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ से जाओगे तो कमरे में बैठ जाओगे तो विवेकी, ऐसा नहीं है। इसलिए वेदांत का विवेक 24 घंटे का होता है, वेदांत की साधना 24 घंटे की साधना, ऐसा नहीं कि सुबह एक घंटा शाम को एक घंटा, ऐसा नहीं कि अभी केवल विवेक होना है और दुकान में जाओगे तो विवेक नहीं, ऐसा नहीं। तो हर समय वेदांत का विवेक आप कर सकते हो, लेकिन कब करोगे, क्या बनना पड़ेगा, धीर बनना पड़ेगा। तो धीर कैसे बनेंगे, यहां पर यह तात्पर्य है, आप अपने स्वरूप में रहो। अपना स्वरूप क्या है, दृष्टा भाव। आप अपने आप को मत भूलो, आप दृष्टा भाव में रहो। आप दृष्टा भाव में रहोगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई आपको विक्षेप नहीं दे सकता है। इसलिए असली जो दोष है ना, असली जो समस्या अंदर है, बाहर नहीं है। हम विवेकी नहीं हो पाते हैं, इसलिए समझते हैं कि उसने गाली दिया बहुत, मेरी कोई गलती नहीं थी। अथवा ऐसा कभी कभी हो जाता है, मान लो कि 10 साल पहले आपको किसी ने गाली दिया था। कब गाली दिया, 10 साल पहले। अब अभी क्या हो गया, उसका स्मरण हो गया, यानी भजन के लिए बैठे हो, माला लिए हो, और उसका स्मरण हो गया 10 साल पहले उसने गाली दिया। देखो स्मरण हो गया, रील चल रहा है, रील चलता है कि नहीं, हाँ रील चल गया, स्मरण आ गया, हाँ अब भजन छूट जाएगा। तो भाई मुझे गाली क्यों दिया था, है ना, मेरी कोई गलती नहीं थी, है ना, आपका भजन छूट जाएगा, आपका पतन हो जाएगा। इसलिए व्यवहार करते समय आप यदि विवेकी बनेंगे, मेरा स्वरूप तो दृष्टा है, ये सब बाकी जितने भी दृश्य आने वाले जाने वाले हैं। इसलिए रसगुल्ला खाना कोई गलती नहीं है, समझ में ना, लेकिन रसगुल्ला खाते समय आप यदि ये खाने की चीज है बस, हो गया ना, महत्व बुद्धि नहीं बननी चाहिए। तो महत्व बुद्धि जब ना बैठे, रसगुल्ला जब खाते हो उसे संस्कार नहीं बनेगा। देखो इस बात के ऊपर कल आपको ध्यान दे लेंगे, कैसे संसार में रह करके आप धीर बन सकते हो, और जब तक धीर नहीं बनोगे तब तक आप ज्ञान के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इतना रखते हैं, ओम शांति शांति।